1992, having served
1992 में मैंने 9 साल की सेवा कर ली थी 12 के सहयोग के रूप में 12 के सहयोगी के रूप में और 22 साल 12 के परिषद में 86 साल का हो चुका था मैं प्रभावित हुआ कुछ लिखने के लिए जिससे मैं अधूरा लिखावट कहता था उस काम का पहला भाग ऐसा था उस रात को मुझे कुछ सुझा एक सोच जो महत्वपूर्ण और गहरा था वो आया जब मैं थका हुआ था इतना थका हुआ कि मैं सो नहीं पा रहा था मेरा दिन बहुत व्यस्त था और अपने नसीब के बारे में सोचा वो सोच यह था जब मैं जवान था 86 का नहीं मैं बिना बच्चक के चल सकता था मेरे कंधे में कोई पीड़ा नहीं थी मैं एक वाक्य दो बार पढ़ सकता था और फिर दोहरा सकता था मैं लंबे समय तक काम कर सकता था और बहुत कम आराम करता था और वो चीजें जो मैं अब नहीं कर सकता हूँ जवानी में ये सब मैं आसानी से कर लेता था अगर मैं अब समय में पीछे जा सकता अगर मैं ऐसा चुनाव कर सकता मैं कभी नहीं चाहता कि मैं फिर से जवान होता मैं बहुत कुछ खो सकता था मैं आगे बढ़ने से बहुत प्रसन्न हूँ अपना जवानी को खोना चाहे वो जितना भी बढ़िया था वो चीज जो मैं खो सकता अगर मैं वापस जाता है मेरी समझ 10 साल पहले मैं तय किया उस शायरी में कुछ वाक्य जोड़ने का 10 साल इतने जल्द बदल गए मैं उन 10 सालों में हमारे बहुत पीड़ा खोया है एक लोहे का कमर ने मेरा बचक ले लिया मैं अब काफी सीधा चल सकता हूँ एक और लोहा का टुकड़ा गले को सीधा रखती है या लोहा का टुकड़ा इतना अच्छी चीज है उसे पोलियो की बीमारी का असर कम हुआ मैं हठिलता पीढ़ी का हिस्सा हो गया मेरे शरीर में बुढ़ापा दिख रहा है वो चीजें सुधरने गए नहीं मेरा एक ही अंग मजबूत होता जा रहा है मेरे भूलने की शक्ति तुम पूछोगे क्या मैं तुम्हें याद हूँ बिल्कुल तुम पहले से बहुत बदले नहीं अब इतना भी अभी परेशान मत हो अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं याद कर पाऊँ मैं मानता हूँ मैंने कुछ चीजें सीखी है मैं जानना नहीं चाहता था मगर उम्र ये अनमोल सच्चाई पेश की है जिससे आत्मा की बढ़ती होती है जो सब आशीर्वादे मिले हैं उसमें से मेरे जीवन की बेहतरीन चीज है वो संगत और सहानुभूति मुझे मेरी प्यारी पत्नी से मिलती है हमारे सभी बच्चों ने अच्छी से शादी की उनके अपने परिवार है बच्चे और नाती पोते हैं और वो और सब कितने जल्द बड़े हो गए मैंने अपनी राय अभी भी नहीं बदली जवान होने के बारे में हमें बूढ़ा होना है क्योंकि ऐसा होने में हमें सच्चाई का ज्ञान मिलता है तुम पूछते हो भविष्य में क्या होगा मेरा नसीब क्या होगा हम साथ में चलेंगे और शिकायत नहीं करेंगे तब पूछना जब मैं 28 को हो जाऊं और पिछले साल मैंने ये वाक्य जोड़ा और अब देखो मैं 28 का हूं साल इतने जल्द गुजर गए पहले मैं ठीक से चला और बचक कर फिर मुझे लाठी को इस्तेमाल करना पड़ा और अब मैं पहियों वाली कुर्सी में जाता हूं कभी कभी मैं आग बंद कर लेता हूँ मगर पुरोहित शक्ति बरकरार है भले ही मेरा शरीर में कामियां है मैंने धार्मिक रूप से बहुत कुछ पाया है मैंने पूरी दुनिया घूमा है 3 मिलियन मील से भी ज्यादा और सैटेलाइट प्रसारण के मदद से मेरी आवाज अभी भी दुनिया भर में पहुंचती है अब मैं निश्चित होकर कह सकता हूँ कि मैं प्रभु को जानता और उससे प्रेम करता हूँ मैं पहले के लोगों की तरह गवाही दे सकता हूँ जब मैं उनके पवित्र वाणी को प्रचार करूँगा मैं जानता हूँ उसे गेसमने और میں جو محسوس کیا سمجھنا بہت مشکل ہے. میں جانتا ہوں اسے یہ سب ہمارے لیے کیا, ہمارا اس سے اچھا دوست نہیں. میں جانتا ہوں وہ پھر آئے گا شکتی اور مہیما کے ساتھ. میں جانتا ہوں میں اسے پھر دیکھوں گا. میرے جیون کے کہانی کے انت میں جب میں مروں گا, میں اس کے زخمی پیروں اور گھٹنے کے بل ہوں گا. ہمارے گھر کے پیچھے کے کھڑکیاں ایک چھوٹے پھول کے باغیچے اور جنگلوں کی اور کھلتا ہے جو ایک چھوٹے نالا کے بغل میں ہے. گھر کا ایک دیوار باغیچے کے بغل میں ہے اور ہرے پتوں والے پیڑ انگلش آئیوی اس پر پھیلے ہیں. کافی سالوں سے یہ آئیوی چھوٹی چڑیا کے گھر رہا ہے. ایک دن آئیوی میں بہت ہلچل تھی, پریشانی سے چیخ رہے تھے چڑیا, اور 8 یا 10 اور آئے تھے پاس کے جنگلوں سے. میں نے ترنت ہلچل کے کارن پتا کر لیا. ایک سانپ آئیوی سے نکل کر لٹک رہا تھا. ہم 50 سال سے اس گھر میں تھے پر کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ جیون میں ایک ہی بار ہونے والا انوبھو تھا, یا ایسا ہم نے سوچا. کچھ دنوں بعد اور ایک ہلچل ہوا, اس بار ہمارے کتوں کی گھیرے میں. ہم نے وہی چیخ سنی اور پڑوس کے ان چڑیوں کو اکٹھا دیکھا. ہم جان گئے لوٹیرا کون تھا. ہمارا ایک ناتی گھیر پر چڑھا اور ایک اور سانپ نکالا جو ابھی بھی ماں چڑیوں کو دبوچے ہوئے تھے جس سے اس نے پکڑا تھا گھونسلہ میں. میں نے خود سے کہا, کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایڈن کے باغیچے میں پھر سے لٹیرا آ گیا؟ تب میرے من میں بھوشیہ وکتاؤں کے کہے گئے چتاونی آئی. ہم شیطان کے پربھاؤ سے ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے, اپنے گھروں میں بھی نہیں. ہمیں اپنے کو بچانا ہے. ہم ایک بہت خطرناک دنیا میں رہے ہیں جو دھارمک چیزوں پر حملہ کرتا ہے. پریوار جو پرم وشیک سنستھا ہے, آج اور انتا میں دکھانے اور ان دیکھ پربھاؤ سے خطرے میں ہے. شیطان فرتیلا ہے, اس کا لکشیہ ہے چوٹ پہنچانا. اگر وہ پریوار کو کمزور کر سکتا یا ناش کر سکتا, وہ سفل ہو جائے گا. انتیم دن سنت پریوار کے شریشت مہتو کو پہچانتا ہے اور کوشش کرتے اس کارے کی سے رہنے کی تاکہ شیطان ہمارے گھروں میں نہ گھس سکے. ہم خود کے اور اپنے بچوں کے لیے سرکشا اور بچاؤ پاتا ہے ان وعدوں کو نبھانے سے جو مسیح کے چیلوں کے روپ میں آگیاکاری ہو کر بنایا ہے. عزیہ نے کہا, اور دھرم کا پھل شانتی, اور اس کا پرینام صدا کا چین اور نشچنت رہنا ہوگا. شانتی پربھو کے بتائے گئے پرتیکارنوں میں بھی وعدہ کیا گیا ہے. اگر ہم تیار رہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے. پروہت کی سمپورن شکتی دیا گیا ہے تاکہ گھر اور اس میں رہنے والے سرکشت رہے. پتا کے پاس ادھیکار اور ذمہ داری ہے بچوں کو سکھلانے اور آشیرواد دینے, اور اس کے لیے سسماچار کو دھرم ودھیوں کو اپلبدھ کرنے کا, اور ایسے ہی پروہت سرکشا کو ضرورت انوسار دینا. اس سے پیار اور ایمانداری اور سمان دکھانا ہے ماں کے لیے تاکہ بچے اس پیار کو دیکھ سکیں. میں نے جانا ہے کہ وشواس ایک سچی شکتی ہے, صرف دکھاوا یا بھرم نہیں. کچھ ہی چیزیں یہ سچی ماں کے وشواس پرارتھنوں سے زیادہ سخت شالی ہے. آپ اپنے کو اور اپنے پریوار کو پوتر آتما کے اپار کے بارے میں سکھلاؤ, اور یشو مسیح کے پراشت کے بارے میں بھی. تم اس سے مہان کاریہ نہیں کرو گے جتنا اپنے گھر کے دیوارے کے بیچ. میں جانتا ہے کہ ہم سورگ ماتا پتا کے آتمک بچے ہیں. اس دھرتی پر اپنے مرنشیل شریر پراپت کرنے اور پرکھا جانے کے لیے آئے ہیں. ہم جن کے پاس مرنشیل شریر ہے, ہمارے پاس شکتی ہے उन जीवन पर के ऊपर जिनके पास नहीं है शरीर। हम स्वतंत्रा है चुनने के लिए और कार्य के लिए, मगर उनके परिणाम हम नहीं चुन सकते, परिणाम बदले नहीं जा सकते। धर्मशास्त्र में चुनने की शक्ति को नैतिक चुनने की शक्ति कहा जाता है, जिसका मतलब है हम अच्छाई और बुराई में से चुन सकते हैं। शैतान मौका ढूंढता रहता है हमें भेका कर हमारी चुनने की शक्ति को दुरुपयोग करने का। धर्मशास्त्र हमें सिखलाता है कि हर मनुष्य धर्म सिद्धांत और सिद्धांत में भविष्य को देखकर कार्य करे उस नैतिक चुनने की शक्ति के अनुसार जो प्रभु ने उसे दिया है, ताकि हर मनुष्य अपने ही पापों के लिए जिम्मेदार रहे कयामत के दिन पर। अल्मा ने सिखलाया कि प्रभु पापों की और तनिक भी झूठ की दृष्टि से नहीं देखता। इसे समझने के लिए हमें पाप को पापी से अलग करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, जब उन्होंने उधारकर्ता के पास एक महिला को लाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसने मामला सुलझाया इन 5 शब्दों से, जा और फिर पाप ना करना। ये है उनके देखरेख का तरीका। सहनशीलता एक सद्गुण है, मगर अन्य सद्गुणों की तरह जब उस पर गौर किया जाए वो एक बुरी आदत बन जाता है। हमें सहनशीलता के जाल से बच कर रहना है ताकि हम उसमें फंसे नहीं। जनता सब सहनशील हो जाती है कमजोर कानून को देखकर, ताकि गलत कार्य को कानूनी कहा जाए। जब गंभीर धार्मिक परिणामों को नहीं रोका जा सकता जो परमेश्वर के शुद्ध के नियम को भाग करने से मिलता है। सभी लोग मसीह के रोशनी के साथ पैदा होते हैं। एक मार्ग दिखाने वाले प्रभाव जो एक व्यक्ति को सही और गलत पहचानने का मौका देता है। हम उस रोशनी के साथ क्या करते हैं और कैसे उसे अपनाते हैं मरणशीलता के परीक्षा का भाग है। क्योंकि सुनो, मसीह की आत्मा हर एक व्यक्ति को इसलिए दिया गया है जिससे वो उचित को अनुचित से जान सके। इसीलिए निर्णय करने का रास्ता मैं दिखलाता हूँ, क्योंकि अच्छे कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है और मसीह में विश्वास करने का आग्रह जो होता है, वो मसीह के शक्ति और देन के द्वारा भेजा जाता है। इसीलिए तुम्हें पूर्ण रूप से जानना चाहिए कि ये सब परमेश्वर से है। हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए पवित्र आत्मा के प्रेरणा और प्रभाव पर अमल करने के लिए। प्रभु के पास एक तरीका है शुद्ध ज्ञान देने का, हमारे मन को हमें प्रभावित करना, मार्ग दिखलाने, सिखलाने, चेतावनी देने के लिए। परमेश्वर की हर पुत्र या पुत्री उन चीजों को जान सकते जो तुरंत जानी होती है। प्रेरणा और प्रतिकारण पाने और उस पर अमल करने को सीखो। मैंने जो पढ़ा और पढ़ाया और सीखा है, उनमें से सबसे अलमोल और पवित्र सच्चाई जो मैं देना चाहता हूँ वो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह की खास गवाही है। वो जीवित है, मैं जानता हूँ वो जीवित है, मैं उसका गवाह हूँ, मैं गवाही के दे सकता हूँ और दूंगा। वो हमारे उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता है। मुझे इसका पक्का विश्वास है। मैं इसे गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।